सत्संग जी, प्रेम से कहना, सत्संगत आज आप सभी भक्ति पर्व के अवसर पर उपस्थित हुए हैं, जहाँ पर करीब एक महीना पहले विशाल संत समागम का जो इन्हीं मैदानों में आयोजन हुआ, जहाँ पर भक्ति से सराबोर भक्तजन कहाँ कहाँ से चलकर आए, जिन्होंने यहाँ पर भक्ति भरी महक बिखेरी, जहाँ पर संसार के लिए जैसे हमेशा भक्त मार्ग प्रदर्शक बने हैं, संसार को यही दिशा प्रदान कर रहे थे, और आज आप उसी भक्ति भावना से युक्त होकर उपस्थित हैं जीवन में भक्ति को और दृढ़ करने के लिए। जहाँ भक्ति का जिक्र आता है, वहाँ पर जिन्होंने ऐसी अनन्य भक्ति की, उन भक्तों को भी समर्पित हो रहे हैं, जिन्होंने आदिकाल से इस मालिक खालिक इस परमात्मा निराकार को जानकर इसको हमेशा ही दिलो दिमाग में बसाकर जीवन के एक एक पल को बिताया, ऐसे भक्तों को भी समर्पित हो रहे हैं। चाहे वो सतयुग, चाहे त्रेता, चाहे द्वापर या कलयुग, और कलयुग के इस दौर में भी जहाँ पर इस मिशन में रहकर इस ज्ञान की रोशनी से युक्त होकर जिन्होंने गुरु के आशय के अनुसार इस जीवन के सफ़र को तय किया, उनकी निष्काम निरोल भक्ति को भी याद किया जा रहा है। तो भक्ति वाकई ही महापुरुष संत जनों ने इस कदर अपनाई है कि अपना जीवन ही भक्ति बना लिया है। उनका उठना, बैठना, चलना, बोलना, वो सब भक्ति ही हो गया है। जैसे दास हमेशा कहता है कि इस तरह से जो एक माँ होती है, वो सुबह शाम दिन रात माँ ही होती है। अगर बच्चे की उम्र बढ़ती चली जाए, फिर भी माँ माँ ही रहती है। कोई बच्चा कहीं पर भी दुनिया के किसी हिस्से में चला जाए, माँ फिर भी माँ ही होती है। इसी तरह से भक्ति भी भक्त के लिए इसी मानिंद, इसी तरह से उसके जीवन का अभिन्न अंग होती है। भक्त कहीं पर भी चला जाए, दुनिया के किसी कोने में, किसी हिस्से में चला जाए, पर्वतों में चला जाए या किसी रेगिस्तानी इलाके में चला जाए, किसी टापू पे जा बसे, उसके लिए भक्ति ही महत्ता रखती है। और भक्ति किसकी? इस मालिक खालिक की। तो इसको जानकर, इसी को समर्पित होकर, उठते बैठते इसका एहसास करते हुए वो दुनिया की तमाम जिम्मेदारियों को निभाता है। भक्ति पलायनवादी को नहीं कहते हैं, एस्केपिस्ट आर नेवर डिवोटीज, कि जो एक पलायन कर जाए उसको कभी भक्त नहीं कहा जाता है। इसी समाज में रहकर, संसार में रहकर जिम्मेदारियों को निभाते हुए भक्तों ने पहले भी भक्ति की है। कबीर जी कहाँ वीराने में चले गए थे, रविदास जी कहाँ पर जंगलों में चले गए थे, और भी हम भक्तों का जिक्र करते रहें वो इसी तरह से समाज का अंग रह बनकर इस मालिक खालिक की याद दिल में बसाकर भक्ति करते रहे, सेवा सत्संग करते रहे। तो इसलिए ये मालिक निराकार परमात्मा के साथ ये मन का नाता जोड़कर इसके एहसास के साथ इस जीवन के सफ़र को तय करना, कर्तव्यों को निभाते हुए, यही यथार्थ भक्ति बताई गई है। इसी को यथार्थ भक्ति कहा गया है। ना कभी लिबास भक्ति का रूप बने हैं, ना पहरावों को कभी भक्ति की पहचान बताई गई है। ये तो वाकई ही जो इस रंग में रंग जाता है, और इसमें रंग में जो रंग जाता है, फिर उसका सुंदर जीवन उसकी पहचान बन जाता है। उसके बोल मीठे हो जाते हैं, उसका मन विनम्र हो जाता है, हृदय में विशालता आ जाती है। जो असहनीय स्थितियां होती हैं संसार की, उसके लिए भी वो सहनशील हो जाता है। इस कदर उसकी अवस्था बन जाती है, क्योंकि इसके रंग में रंगा है, इसको दिलो दिमाग में बसाया हुआ है, इसलिए ये गुण उसकी पहचान बन जाते हैं। ना पहरावा, ना करने और कोई एक साधन जो है उसकी पहचान बने हैं, ना उसका कहीं भाग खड़े जाना वो उसकी पहचान बनती है। उसके ये मन की अवस्था, और उसी मन की अवस्था के अनुसार उसके जीवन की चाल, वो सुंदर भाव, भावों के अनुसार सुंदर व्यवहार, ये वास्तविकता में उसकी सही मायनों में पहचान बनती है। बाहरी पहचान कौन नहीं बना सकता है? लिबास किसी रंग का भी कोई कहीं से भी उपलब्ध कर सकता है। बाहर तो कभी भी पहचान नहीं बनी है। ये बाहरी रूप, ये बाहरी पहरावे, ये कभी भी भक्त की पहचान नहीं बने हैं। ये तो भक्त की पहचान हमेशा ही उनके गुणों ने उनकी पहचान इस कदर बनाई कि ताउम्र के लिए, ताउम्र के लिए नहीं बल्कि इटर्निटी तक उनका यश वो कायम हो गया। तो इसीलिए महापुरुष संत जनों ने हमेशा ही इस रंग में रंग कर, क्योंकि जहाँ पर नाम का रंग, भक्ति का रंग मांगा जाता है, ये भक्ति मांगते हैं। हनुमान जी का भी जिक्र हुआ कि इतनी उपलब्धियाँ के बाद भी जब ये कहा गया कि मांगो, क्या मांगते हो, तो यही उन्होंने कहा कि अगर देने पे ही आए हो तो भक्ति का ही दान दे दो, कि ये भक्ति ना छोड़ बैठूँ मैं, ये भक्ति कमज़ोर ना हो जाए। जो रंग पहले चढ़ाया, कहीं दुनियावी प्राप्तियाँ हो गईं और मैं उनमें ही ना खो जाऊँ, ये भक्ति मेरी कायम रहे, ये भक्ति मेरी उसी तरह से मजबूत रहे। तो इस प्रकार से महापुरुष संत जनों ने ऐसी एक मांग भी मांगी है, मांगन ते मांगू निका हरजस गुरते मांगना, कि ये मांगा भी यही है, दिन प्रतिदिन मांगा है, नेता प्रति मांगा है, हर हालात में मांगा है। इस मालिक निराकार दातार की अनन्य भक्ति, इसका एहसास ये मांगा है, यही रंग सबसे बेहतर और सुंदर है, यही माना है, इसीलिए इसी रंग से ये इसी रंग में रंगे रहे हैं। दुनिया के रंगों को चढ़ाया नहीं है अपने मन के ऊपर, और इसी रंग से अपनी खूबसूरती को बढ़ाते चले गए हैं और यश के पात्र बनते चले गए हैं। तो ये दिन प्रति, जैसे कहने वालों ने कहा है कि फेथ एंड डिवोशन इज अ ब्रेड टू बी डेली ईटन, इट्स नॉट अ केक फॉर स्पेशल ओकेजन्स, कि केक हम कोई बर्थडे होता है, कोई एनिवर्सरी होती है, तो सम स्पेसिफिक लिमिटेड ओकेजन्स होते हैं साल में जब हम वो केक का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक कॉमन फैक्टर है कि ब्रेड हम लगातार खाते रहते हैं। अगर हम वेस्टर्न सिविलाइजेशन में या कॉन्टिनेंटल देख लें तो ब्रेड के बगैर उनका ब्रेकफास्ट होता ही नहीं है। यानी कि आहार, उसको उस रूप में हम ब्रेड ना माने, जो हम कोई फुलका इत्यादि खाते हैं उसको भी अंग्रेजी में ब्रेड कह देते हैं। सो फेथ एंड डिवोशन इज अ ब्रेड टू बी डेली ईटन, इट्स नॉट अ केक फॉर स्पेशल ओकेजन्स। आज भक्ति पर्व है, स्पेशल ओकेजन है, इसलिए केवल आज हमारी भक्ति बहुत इस प्रकार से उमड़ उमड़ के आ रही है, ऐसा नहीं है। ये हमारा डेली ब्रेड है, ये हमारे दिनचर्या में ये हमारी खुराक है, और इसी से हमें तंदुरुस्ती, जैसे उस पदार्थ रूपी ब्रेड का इस्तेमाल करते हैं, खाने का भोजन का इस्तेमाल करते हैं, शरीर में रक्त और बढ़ता है और हमारे तन को दुरुस्ती और तन की तत को ताकत प्राप्त होती है। इसी तरह से इस खुराक से हमारी मन की दुरुस्ती होती है, मन को और मजबूती मिलती है, और फिर हम इसी प्रकार से इस जीवन के सफ़र को तय कर जाते हैं। तो तमाम भक्तों महापुरुषों ने भक्ति वाले पहलू को कितना अहम माना है। किसी ने कहा चंद पंक्तियाँ अंग्रेजी में, जो भक्त तो नहीं था लेकिन उसके शब्दों से ही आप अनुमान लगा सकते हो, वो कहता है कि आई एम अ वेरी हार्ड लाइन एंग्री एथिस्ट। हार्ड लाइन एंग्री एथिस्ट यानी कि नास्तिक, बहुत मजबूत गुसैल एक नास्तिक। आई एम अ वेरी हार्ड लाइन एंग्री एथिस्ट येट आई एम सो फैसिनेटेड बाय द कंसेप्ट ऑफ डिवोशन। कि एक नास्तिक भी कह रहा है कि जो कंसेप्ट है डिवोशन का, इबादत का, बंदगी का, आई एम फैसिनेटेड बाय इट, उसका मेरे ऊपर प्रभाव है। हालांकि मैं बहुत ही मजबूत नास्तिक हूँ, तो अगर किसी में थोड़ा सा भी भक्ति का कण या प्रभु में यकीन है तो अनुमान लगा सकते हैं उसके लिए भक्ति कितनी अहमियत रखती होगी। तो अब साथ संगत तौर तरीकों को, राइट्स एंड रिचुअल्स को कभी भक्ति नहीं माना, जैसे पहरावे की दास बात कर रहा है। वाकई ही इस प्रकार से जीवन को जी लेना, प्यार के साथ जी लेना, विनम्र हो के जी लेना, हर हालात में मजबूत रहना, आशिक हो में इश्क कमावे, दिल रखी वांग पहाड़ा हूँ। मियाँ बाहू कह रहे हैं, आशिक हो में इश्क कमावे, दिल रखी वांग पहाड़ा हूँ, कि पहाड़ों जैसा मजबूत इरादा, पहाड़ों जैसा मजबूत विश्वास, जैसे हज़रत ईसा मसीह जी, लॉर्ड जीसस क्राइस्ट ने वो मिसाल दी कि इमारतें जो चट्टानों के ऊपर खड़ी की जाती हैं, जो रॉक के ऊपर बनाई जाती हैं, उसकी फाउंडेशन बनाई जाती है, उनमें कितनी मजबूती होती है। सिमिलरली आवर फेथ इन गॉड एंड डिवोशन फॉर गॉड हैज़ टू बी दैट स्ट्रांग। इस प्रकार से उसको ये मजबूती हमेशा मिली रहे। तो दिल रखी वांग पहाड़ा हूँ, अगर पहाड़ों जैसा विश्वास और भक्ति ना होती, समाज ने कब का कबीर जी को ज़रा से झोंके से ही भक्ति के मार्ग से उखाड़ देना था, लेकिन कबीर जी कायम रहे। मीराबाई को एकदम से मजबूर करके भक्ति का मार्ग छोड़ने पे मजबूर कर देना था, लेकिन समाज लोक लज्जा एक तरफ कर दी, क्योंकि दिल रखी वांग पहाड़ा हूँ। पहाड़ों जैसा मजबूत वो विश्वास इसकी अनन्य भक्ति इसीलिए करते चले गए, और ये मानकर चलते गए कि संसार मारने के हमें डरावे देता है, हम तो पहले ही मर चुके हैं। जे तू मरे मरण तो अज्ञेता मरण दा मुल पाएंगा, ऐसी मरनी जो मरे तो बहुत न मरना होए, ये क्या हमें मारेंगे, हम तो पहले ही मरे हुए हैं, हम गुरु नंकार के आगे पहले ही मरे हुए हैं, ये हमारी मैं रही नहीं है, हमारा इसका मतलब अस्तित्व रहा ही नहीं है, और जब अस्तित्व रहा ही नहीं तो इनके पास मरने के लिए क्या है, कोई अस्तित्व होगा तो उसे तो मार लेंगे, लेकिन अस्तित्व रहा ही नहीं तो मारेंगे किसको। जैसे ये भी मिसाल दास ने कई बरस पहले दी, आज फिर से ध्यान में आ गई कि अक्सर स्कूल में जब पढ़ते थे, जब किसी ने होमवर्क नहीं किया या अटेंशन नहीं दे रहा स्टूडेंट, तो एक जो रूलर जो एक हाथ में होता था टीचर के, तो कहता था टेक आउट योर हैंड, अपना हाथ सामने करो, और उसके ऊपर मारता था। या कोई और स्कूलों में हम देखते हैं कोई पतली सी छड़ी होती टीचर की, वो हथेली पर मारता, और जब टीचर उठाता मारने के लिए तो जो ही नज़दीक आता था रोल तो वो हाथ अपने आगे से हटा लेता बच्चा, क्योंकि पीड़ा होगी, हटा लेता था। तो वहीं से ये ध्यान में आई बात कि सामने हाथ रहता है तो उसके ऊपर तो लगेगी चोट, अगर हाथ है ही नहीं तो किसके ऊपर लगेगी, अगर मैं हूँ ही नहीं तो मेरी ईगो कहाँ पर हर्ट होगी, मेरी ईगो रहती है तो हर्ट होगी ही होगी, मेरा अहम है तो मुझे परेशान करेगा ही करेगा, और जब अहम है ही नहीं, अभिमान है ही नहीं, मेरा अस्तित्व ही नहीं, मैं किस तन मन धन की का अभिमान करूं, ये सब दाते हैं दातार की, गुजरान के लिए दी गई हैं, तो मैं फिर इसका असर क्यों लूंगा, इसीलिए यश अपयश इसका मैं प्रभाव क्यों ग्रहण करूंगा, मैं तो है ही नहीं हूं, यश भी था तो मेरा थोड़ी था, ये भी तो दातार की कृपा जो मुझे यश दिलवा रहा है, वरना अपनी करनी ते नरक ना पाऊं ठोर, वरना मेरा कौन यश करने वाला है, मुझे कोई पूछने वाला नहीं है, मेरा तो कोई अस्तित्व नहीं है, ये तो इसकी कृपा है। वो उसी मोर के मानिंद जिसकी मिसाल शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी की जुबान से बचपन से सुनी थी, कि किस प्रकार से एक मोर के मानिंद कि मोर के पांव खूबसूरत नहीं होते हैं, पंख कितने खूबसूरत होते हैं। तो भक्त यही मानता है कि अगर एक अच्छाई या कुछ भी गुण अगर नज़र आते हैं तो ये पंखों के समान ये गुरु नंकार की कृपा का रूप है, और अगर कमी है मेरे जीवन में तो पोर के पंखों के समान, उनके पाँव के समान है, तो मेरे कर्म वो कुरूपता रखते हैं, लेकिन इसकी कृपा वो खूबसूरती रखती है। मोर के पंख खूबसूरत हैं, पांव बदसूरत हैं, तो मेरे कर्म जे वेखें जे वेखा अमला वल्ले ते कुछ नहीं मेरे पल्ले। तो ये भक्त हमेशा ही ऐसा मानता आया है, तो इसीलिए भक्ति का जिक्र हो रहा है। इस निराकार दातार परमात्मा को जानकर इसका बोध हासिल करके आत्मा का कल्याण होता है, वहाँ फिर बाकी की जितनी भी हमारी उम्र है, जितनी भी हमारी आयु है, ये इस प्रकार से फिर हम इस जीवन के सफ़र को इसी भाव से युक्त होकर हम तय करते चले जाते हैं, और ऐसा ही भक्तों ने पहले किया है। इसी प्रकार से उन्होंने इस मालिक खालिक को समक्ष रखा है अपने इसको आंखों से ओझल नहीं होने देता दिया है। किस तरफ भी मुख घुमा लें इसी के दीदार, हर घट में इसके दीदार, पत्ते पत्ते में इसी के दीदार, हर लम्हे हर पल में इसी का दीदार, इसका एहसास के रूप में। और इस तरह से वो फिर प्रभु का ही रूप हो गए। आज भक्तों की पूजा प्रभु के रूप में हो रही है। जैसे वो वचन हम पहले भी पढ़ते हैं कि हरजन ऐसा चाहिए जो हर ही जैसा होए, कि हरि का ही जैसा हो जाता है, वो हरि वाला ही रूप बन जाता है। इसीलिए हरि की तरह ही भक्त की पूजा हो जाती है। तो आओ साध संगत, यही अरदास यही प्रार्थना की जाती है कि दातार ऐसी कृपा करे, सभी को भक्ति भरा जीवन जीने की शक्ति दे, ये तौफीक दे, ताकि सभी इस प्रकार से अपने जीवन को ऐसे रंगों से सजा लें जो भक्ति वाला रंग है, जो नाम वाला रंग है। इसी रंग में रंगे हुए ये जीवन का हर पल जो है अनंत से ये व्यतीत करते चले जाएं और संसार के ऊपर उपकार करते चले जाएं। इन्हीं शब्दों से दास आपसे इजाज़त चाहेगा। सत्संगत जी धन।
सत्संगत इसी प्रकार बैठे रहेंगे।